राधा राधिका रमण के भवन में इस सप्ताह व्यापी जो कथा अनुष्ठान के आज षष्ठ दिवस है, तो आज आप लोग जो भी श्रद्धालु भक्तगण मातागण पधारे सबको विशेष स्वागत है। टू मोर डेज टुडे एंड टुमारो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। श्री जगन्नाथ अष्टकम,
कदाचित कालिंदिता
Thank you.
जगन्नाथ शकं पुण्यं यपते सहस्रे सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुरूपं सरच्छते श्री जगन्नाथ देव भगवान की। श्री चोराग्रगण्य पुरुषोष्टकम्
प्रचेतसीधं नवनीतचूडं गोपाङ्गनानां च गोकुलचूडम्
Thank you.
सद्लबन्धननिश्चलासन् वां कृष्णहे प्रलयकोटिशतान्तरेति सर्वस्य चौरां हृदयान् हि मोचयामि
तटवर्ती पवित्र भूमि में दोनों राजा असुरराज और देवराज भीषण युद्ध में उपस्थित हैं। केवल युद्ध करने के लिए खड़ा नहीं है, युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध हो करके एक दूसरे के सैनिक अपना अपना अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके हताश होकर के रणभंग देकर जा चुके हैं और असुरराज रुद्र ने जबकि देवराज उनको अपने गदा से प्रहार किए थे उन्हीं के गदा से वापस उनको मार करके ऐसे घायल किए हैं उनके गाड़ी के सहित कि दोबारा मारने के लिए नाम निशान नहीं मिले, खड़े हैं सामने, इतने डर चुके हैं, इतने शंकाग्रस्त हैं। और उनके बिल्कुल सामने सामने रुद्रासुर आकर के आप लोग इनसे सुने किस प्रकार उनको खूब गाली दिए, उनके पाप के बखान किए और उनको किसी प्रकार दंडित करके प्रतिशोध लेना चाहते हैं, ये सारे बताए उनके सामने। इंद्र सब सुन रहे थे लेकिन चुपचाप खड़े थे क्योंकि रुद्रासुर का इच्छा नहीं था इंद्र को मारने के लिए, वो नहीं चाहते थे, वो जानते थे इंद्र को नहीं मारना चाहिए, वो मुझे मारेगा मैं क्यों उनको मारूंगा, उनका प्लान नहीं था ये, केवल उनको धमकी देते थे उसका रहते कि वो मुझे मारे। तो लेकिन इंद्र नहीं मार रहे थे। तो काल तक आपने सुने हैं उन्होंने इंद्र को प्रोत्साहित करने के लिए कितने प्रकार के उनको बोले कि निश्चित मार दो, ये अस्त्र बना हुआ है मुझे मारने के लिए, भगवान का आदेश मिला है, दधीचि का तपस्या है इसमें, भगवान की तेज है, ये सब सब कुछ कैसे मारो, तुम्हारा भी काम बनेगा, मेरा भी काम बनेगा, सब कुछ कह दो, लेकिन इंद्र सब सुनकर के चुप बैठे, नहीं मार रहे। कितने उन्होंने बोल दिए, कई श्लोकों में समझाए, मारो में ये सुजो कहां मिलेगा तुझे, मैं तेरा शत्रु हूं और पूरे देव समाज में मारने के लिए तैयार है, मेरे बिना तू चैन से रह नहीं पाता, और मैं तेरे सामने खड़ी हूं, प्रतिकार नहीं कर रहा हूं, तो वज्र लेकर खड़े मुझे मारने के लिए मारो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगा। लेकिन इंद्र सब कुछ होते हुए भी डर नहीं मार, वो बोल बोल के थक गए, बहुत प्रसन्न नहीं मार रहा। तो अभी श्री वृद्धासुर चिढ़ गए, चिढ़ करके कहते हैं कि ठीक ये इंद्र स्वर्ग काम, ये तुच्छ बहिर्मुखी, केवल बाहर के सुख जिनका लक्ष्य है, इस थर्ड क्लास आदमी के इतने टाइम खराब करता हूं, इतने टाइम एनर्जी वेस्ट करता हूं, क्यों नहीं इतने मेरे प्रभु की क्यों नहीं प्रार्थना करूं, जो मेरे इष्ट देव है, जो मेरे निज प्रभु है, इनको प्रार्थना करने से तुझे काम बनेगा, ये थर्ड क्लास है, मुझे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं। बहिर्मुखी केवल बाहरी सुख के लिए सुख के लक्ष्य करके बैठा, क्या जानता है मेरा भाव को क्या समझेगा। ऐसे समझ करके इंद्र से मन हटा करके, दृष्टि हटा करके, बिल्कुल बेचैन होकर के आपने निज इष्ट देव श्री शंकरषण के प्रति तत्क्षणा समाधिस्थ हो गए, बिल्कुल तन्मयता से उनको ध्यान कर लिए। युद्ध भूमि में देवराज इंद्र महाशत्रु के सामने, वज्र उनके सामने तैयार है मारने के लिए, वो क्या इतने उच्च कोटि के भक्त थे, जो ऐसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं, किसी भी स्थान में रहे, किसी भी काल किसी भी परिस्थिति में रहे, उनको तो भगवत भावना में रहेंगे, ऑफिस में रहे, रास्ता में रहे, कचहरी में रहे, घर में रहे, किसी भी स्थान में रहे, तो भगवत उनको भावना मन में रहे, देव की कृष्ण कॉन्शियस। वो युद्ध स्तर में भी इस समय देखा कि इंद्र सुनने रहा, मेरे ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूं, इससे उनको फायदा क्या, तो तुरंत उनके सामने ध्यानस्थ हो गए, पहले बोल ही रहे थे देखो मुझे मार, मैं तो मेरे ठाकुर जी में मन लगाऊंगा, मुझे कोई होगा नहीं, तो तेरा काम मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन अभी मन लगाने को नहीं मानना था, लेकिन सचमुच मन लगाए, बिल्कुल सारे जगह से मन बुद्धि को एकत्रित करके एक साथ इनको सिद्ध थे, भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे असुर शरीर में, लेकिन असुर थे नहीं, जन्म से असुर थे, कर्म से तो बहुत उच्च कोटि के। तो तुरंत वही युद्ध क्षेत्र में उनके सामने इतने तन्मयता से आपने इष्टदेव शंकरषण को ध्यान किए, बिल्कुल ध्यान में भगवान प्रकट हुए उनके सामने, देखे उनके सामने प्रभु को, ये कोई साधारण भक्त थे नहीं, इतने तन्मयता से ध्यान किए, भगवान को सामने खड़ा कर ध्यान दृष्टि में आपने हृदय कमल में देखे भगवान, देख करके आगे श्लोक कहे, कभी इंद्र को नहीं कहे, जा तेरे से बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आंख बंद करके सारे इंद्रिय को निग्रह करके ध्यानापस्थित तदगत न मनसा पश्यंती जन योगिनः, जिनको बड़े बड़े योगी ध्यान में देखने के लिए हजार वर्ष प्रयास करते नहीं देख पाते, क्षण भर में एक सेकंड में वार फील्ड में जघन्य युद्ध क्षेत्र में वहीं पे ध्यान लगाकर देख लिए, देख कर अपना प्रभु से डायरेक्ट बातचीत करने लगे, केवल देखे नहीं ध्यान लगाते, बातचीत करने लगे, इंद्र सुन रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा, सुन रहा, केवल इंद्र नहीं सकड़ों देवता सिद्ध साध्यगण सब देख रहे, असुरगण भी तुम बातचीत कर देखते होंगे, क्या क्या रहे हमारे सेनापति, वो तो सीधा भगवान से बात करने लगे, आंख बंद कर सीधा, ये जो बात कर रहे हैं आपने प्रभु के साथ अपनी बात, ये श्लोक तीन चार श्लोक अभी आएगा, इसलिए काले श्लोक में टच नहीं किया, मैं केवल इस श्लोक को एक दिन करेंगे। ये श्लोक श्री वृद्धासुर जी ने सीधा युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु के सामने मरणोन्मुख होकर के एक तल्लीन ध्यान में अपने प्रभु के साथ बात कर रहे हैं, सीधा बात कर रहे हैं, बात करते हुए श्लोक कहते हैं, इंद्र को बोल बोल के थक गए और उनसे ना करके सीधा अपने प्रभु को बोल रहे हैं, अहं अहं आदि, अब सीधा मेरे बात प्रभु के साथ बातचीत होता, अहं हरे तव पादैकमूलम् दासानु दासो भवितास्मि भूयः मनस्मरे आसुपतेर्गुणास्ते गुणीत वाक्कर्म करो दुखायः अहं हरे तव पादैक मूल। सबसे पहले सूत्र बोलते हे प्रभु हे हरि अहं मैं हरे तव पादैक मूलम। आपने प्रभु को दूसरा कोई नाम ना कह करके हरि करके पुकारते। हरि शब्द भगवान के बड़े प्रसिद्ध प्रिय शब्द है। भगवान के नाम में भगवान के जितने नाम हैं हरि बड़े प्रसिद्ध है। प्राय लोग हरि हरि बोलते हैं। हरि शब्द को संबोधन अर्थ में बुलाने संबोधन करने में एकार हो जाते हरे के हे हरि। लेकिन संबोधन करने से हरे चाहे हरा संबोधन करने से हरे दोनों एक ही बात है। तो भगवान जो हरि नाम है हम ये हमारे महामंत्र जो जप करते हैं ये महामंत्र में भगवान का नाम तो चार चार बार आता है। राम नाम चार बार कृष्ण नाम चार बार लेकिन हरे आठ बार इतने प्रिय। तो बोलते हैं कि हे हरि व हरे। हरि शब्द का अनेक अर्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इसको अर्थ कर रहे थे पहले हरि शब्द अनेक अर्थ दो ही मुख्य मानी बोले दो मुख्य मैं मानता हूं ऐसे अनेक अर्थ है हरि शब्द का लेकिन दो मुख्य है। क्या है हरि शब्द अर्थ है सर्व दुख हरण जो सब कुछ दुख हरण करने वाले हैं हरणकारी सब दुख हरण करता वो कौन है हरि। बोले एक तो ये मुख्य अर्थ में सर्व दुख हरणकारी हरि दूसरे सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। बोले दुख नहीं जितने अमंगल है सारे हरण कर लेता है केवल हरता नहीं और क्या करता है ना प्रेम दिए हरे मन मन को भी हरण कर जाता है प्रेम देकर चित्त हरण कर लेता है ये हरि हृदय हरण कर लेते हैं सब कुछ हरण कर लेते हैं। तो हरि से तो बड़े प्रसिद्ध है भगवान के। तो आज इतने भाव विभोर होकर के श्री वृत्त असुर ने आपने प्रभु को सामने ध्यानस्थ देख करके बोलते हैं प्रभु मैं आप प्रार्थना करता हूं अहम हरे हे हरि मैं आपके पादैक मूलम दासान दास भूय दास भूय। भूय शब्द का अर्थ है अगेन पुनः। पुनः शब्द का उच्चारण मात्र ये निश्चित ध्वनित अर्थ निकलता है कि पहले ये दास के दास हम कुछ थे नहीं तो दोबारा मुझे फिर कब मिलेगा फिर मतलब पहले तो है तब तो बोलते फिर भूय मतलब फिर। हे प्रभु हे हरे आपके चरण कमल जिसका सर्वस्व है जिनके जीवन में और कुछ नहीं केवल आपके श्री चरण ही सर्वस्व है ऐसे पादैक मूलम जिनका मूल ही आपके चरण कमल है ऐसे आपके समर्पित दास जो भक्त हैं उनके दासों की दास मैं कभी बनूं फिर कभी क्या बन सकता हूं प्रभु। वो यह क्यों कि मैं पहले तो आपका दास बना था लेकिन इतने इतने मजा नहीं आपके दास बनने में आपके दास बनने में इतने मजा नहीं है इतना आनंद नहीं तो फिर मुझे एक और चांस दीजिए मैं आपके दास न बनकर के आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनना चाहूं प्लीज। ये पहले तो ऐसे हो गया था डायरेक्ट आपका दास बन गया था लेकिन अभी काम पकड़ रहा हूं मुझे अफसोस है तो फिर मुझे एक चांस मिलेगा कभी आपके भक्तों के भक्तों के दास कभी बन सकता हूं क्या। अगर बनना है और कब तक अपेक्षा करो अपेक्षा करते करते मैं जर्जरित हो चुका हूं बहुत बेचैनी हो चुका हूं प्लीज टेल मी मुझे बताओ कब तक और वेट करूं कितने काल तक रहूं उत्कंठा मेरा बिल्कुल असह्य हो रहा है अब कब तक इस स्थिति मुझे प्राप्त होगा। अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदास भूय दास्मि भूय कब फिर मैं बनूंगा। ये कह करके कहते हैं, समझो भगवान के सामने खड़े थे, देख रहे थे, उनसे डायरेक्ट बात कर रहे। भगवान बोले, तू मेरे इतने प्रिय है, तू मेरा ही आदमी था, कुछ गड़बड़ी के कारण असुर हो गया, लेकिन मेरे जो हो जाते मैं उसको भूलता नहीं। गुरु तो क्यों चिंता कर रहा है, क्यों दुखी हो रहा है तुझे, मैं हूं ना, क्या चाहिए बोलो, तत्क्षणा अभी मैं अपनाता हूं आपको, क्या चाहिए बोलो, क्यों दुखी हो रहा, मैं अभी तुझे क्या वर मांगो, तेरा अभिष्ट इच्छा अभी पूरा कर देता हूं। भगवान देखे उनके भक्त इतने बेचैन होकर के युद्ध क्षेत्र में ध्यान से प्रार्थना करता है, तुरंत प्रभु बोले, पुत्र क्यों डरता है, बोलो क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए बोलो मुझे। अगर प्रभु ऐसे बोलते हैं कि क्या चाहिए बोलो, तुरंत मैं तुझे अभी आत्मसात करना चाहता हूं, अभी वरदान देना चाहता हूं, तब रुद्र अपने मन खोल करके बोल रहे हैं ये दो लाइन, मना स्मरित आसु पते गुणास्ते। आसु बोलते हैं प्राण को, पति मतलब प्राणपति, हे प्राणनाथ, हे प्राणपति, आप मुझे देना चाहते हैं कुछ करना नाम, बस मेरे तीन ही इच्छा है, क्या, हे आसु पते, हे प्राणनाथ, सबसे पहले मेरा मन आप में लगे रहे, अभी स्मृति तब चरणार विंदे भवे भवे मस्तु भवत प्रसाद, आपके कृपा से मेरा मन हमेशा आप में लगे रहे, एक क्षण के लिए विस्मृति ना हो, एक क्षण विस्मृत ना हो, हमेशा स्मरण में रहे आप, सबसे पहले ये वरदान दीजिए प्रभु, कभी आपको ना भूलूं। दूसरे, मन स्मरे, आप हमेशा मन मेरा स्मरण करते रहे हे प्राणनाथ। दूसरा, गुणित वाक, मेरा वागेंद्रिय मेरा जो वाणी है हमेशा केवल आपके नाम गुण लीला को कीर्तन करे और कोई शब्द उच्चारण ही ना करे। दूसरा, ये इच्छा पूरा करो हे प्रभु, मुंह से जबान से कोई दूसरा शब्द ही ना निकल पावे, केवल आपके नाम रूप गुण लीला निकले पास। और एक फाइनल इच्छा है, तीसरा इच्छा, कर्म करो तो कायह, और ये शरीर मन वाणी और शरीर एक दिन तो होता काय मन वाक्य, मन से आपका स्मरण करूं, वाणी से आपका कीर्तन करूं और शरीर से आपका सेवा करूं। आपके कर्म कैसा कर्म, ना आपके पद सम्मान करूं, आपको अलट चामर करूं, आपको तंबड़ा आदि जगाऊं, आपको माला बना, जो भी आपके शारीरिक सेवा आपके करता हूं, आप दास बनकर करूं, बाकी कोई नहीं, मेरा पोजिशन नहीं, आपके इसी प्रकार स्थिति जाकर मैंने आप सर्विस करना चाहता हूं, बस ये तीन इच्छा। ये तीन बात कहते तो भगवान तुरंत बोले, तो ये तीन चाहता है, ये तीन से क्या होगा, मैं जब प्रसन्न होता हूं मैं तुरंत अभिष्ट सिद्धि करता हूं, देख तू ये सात इंद्र के पीछे पड़ा है, इंद्र भी तेरे पीछे से पढ़ करके दुनिया भर का नाट कर रहा है, सुमड़े स्वर्ग से है क्या, ये स्वर्ग के लिए इतने लड़ाई झगड़ा मार पीट इसके लिए इतने कर रहे, इतने दुख पा रहा है तुझे, मेरे वृत्त छोड़ो, इंद्र का पोस्ट में कुछ नहीं, उससे बड़ा पोस्ट देता हूं मुझे, नाक पृष्ठम, नाक कहते स्वर्ग को, स्वर्गवयं स्वर्ग नाक का मतलब दुख, अ मतलब नहीं, जहां दुख नहीं इस प्रकार से अर्थ में नाक मतलब स्वर्ग, अब नाक पृष्ठम स्वर्ग से ऊपर के ओर पोस्ट कौन सा है, बोले ध्रुवलोक, अक्षय ध्रुवलोक जो नाक के ऊपर है, स्वर्ग के ऊपर है, वो ध्रुवलोक दे दू तुझे, ये वैकुंठ का पाठ है, दे दू, ध्रुवलोक नहीं लेना चाहते, अरे परमेष्टि पद दे देता हूं, इंद्र को छोड़ ब्रह्मा पद दे देता हूं, ध्रुव पद परमेष्टि पद, सार्व हो चला एक मन नहीं मानता, सार्व हो लगाए रसाधिपत्यम, और पाताल और धरती और स्वर्ग तीन लोक के सार्वभौम अधिपति बना दूं, दशाधिपत्यम ना नहीं ऊपर नहीं रहना चाहिए आपके पाताल लोक, पूरे पाताल सात लोक कर देता हूं, सात पाताल के अधिपति कर देता हूं, अगर ये पोस्ट पोजिशन नहीं चाहता तो मुझे अष्ट सिद्धि रिद्धि जोगी सब दे देता हूं, सिद्धि विधि सब दे दूं आपको, योग सिद्धि, ये जो तीन बात ले मुझे लगेगा तुम्हें कुछ दिया तू की तरह दुखी पारण दे दूं, सारे योग सिद्धि दे दूं, ध्रुव पद दे दूं, ब्रह्म पद दे दूं, या रसातल अधिपति बना दो या सार्वभौम राजा बना दो। जैसे भगवान ने ये बात कहे तुरंत उनके सामने विकल होकर के सर हिला करके ना 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 करता, ऐसे ना ना करके बोलता है ना नाक पृष्टं न सार्वभौम न सजोग सिद्धि, ये ना ना तीन बार कहता है ना 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 मुझे नहीं चाहिए, ये क्यों मुझे देना चाहते, ये मुझे नहीं चाहिए। ना नाक पृष्टं न च परमेष्ठ्यं, मुझे ध्रुव पद नहीं चाहिए, ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, न तो सार्वभौम न रसाधिपत्यम, सार्वभौम अधिकृत इतने बड़े राज पद नहीं चाहिए कि रसातल के अधिपति भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए, पुनर्भव दोबारा जन्म मुक्ति दे दो मुक्ति भी नहीं चाहिए। अरे बड़े बड़े जोगी ऋषि सुधि देवेंद्र जोगिंद्र मनिंद्र इसी काम के लिए जीवन जीवन बिता बिता कर मांग रहे हैं उनके पीछे, मैं ऐसी दे रहा ब्लैंक चेक तुझे नहीं चाहता ना ना, इसलिए ना ना चार बार कह करके नकार दे मुंह सर हिलाते हो पानी में भी कहते नहीं नहीं नहीं, इसके क्यों देना चाहते हैं। फिर क्या गाशन समंजस काम विरहं विरह काखे बोलते हे समंजस हे अखाल्य हे निखिल सौभाग्यपति, समंजस मतलब जावत्य प्रकार सौभाग्य के आगार, हे निखिल सौभाग्य निधे जो सब कुछ सौभाग्य दे सकते हैं, आपसे मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये मत दीजिए, क्यों ये मेरे विरह के भावना को शांत नहीं कर सकता, मैं आपसे विरह के कारण तड़पता हूं, आपके विरह मेरे से सहन नहीं होता, असहनीय विरह आपसे, आप ये सब वस्तु लेना चाहते हैं, इसी में क्या होगा। जो वास्तविक कभी कभी बहुत प्रेमी पुरुष जो होते हैं ना, उनको कोई अति प्रियतम उनका बोलते हैं टेल मी व्हाट शुड आई गिव यू, तेरे लिए क्या लेकर आऊं क्या लेकर आऊं, बहुत पूछते हैं, तो सचमुच जो प्रेमी होते बोलते हैं कि नहीं, अगर सचमुच है मेरे प्रिय पति अगर मुझे सचमुच देना चाहते हैं कोई वस्तु मत मत दीजिए, मुझे आप ही दीजिए, आपने आप को दीजिए, आई वॉन्ट यू नॉट एनीथिंग एल्स, आप मिल गए तो सब मिल गया, और मुझे और दूसरे क्या चाहिए, ये बहुत क्लेवर है। तो ये वृद्धास नहीं मांगता, बोले प्रभु मुझे आपको चाहिए, ये सब आपका है, इसको लेकर मैं क्या करूं, आपका विरह से मैं परेशान हूं बेचैन हूं, और आप ना करके उनको सुख दे रहे समझ को समझ मेरा क्या हुआ। जैसे कभी आपको निचला फास्टिंग किए थे पता नहीं इतने भूख सता रहा है, इतने भूख और प्यास में तड़प रहे हैं, 28 घंटा से नहीं खाए और पानी पिए नहीं, बिल्कुल चुचंदर कूद रहा है पेट में, इतने तेज भूख लग रहा है, और आप आए आशा करके कोई गेस्ट के घर मंदिर में आए, आपको मैंने प्रसाद के लिए पागल हो रहे हैं, आपको देख करके सभी लंबे लंबे दंड में प्रणाम करें, प्रभु आप बहुत अच्छा किए, आए माला सब आए पहनाने के लिए, आसन दे बैठाने के लिए, और बड़े बड़े मीठे बात कहे, आपको अच्छा लगेगा। बोले अरे पागल कहीं के छोड़ो ये सब, कहीं दो सूखा रुका तो कहूँ मर जा रहा हूँ, ये माला पहना से क्या होगा मेरा, ठीक है ही दशा। तो देख प्रभु ये सर्ग ध्रुव पद ब्रह्म पद रसाधिपत्य सार्वभौम, इससे मेरा क्या होगा, पेट नहीं भरने वाला, भूखा भर रहा हूं, ऊपर से ही अलंकार देने से क्या होगा, इतने सोने चांदी मोणि मत्यों के अलंकार दे दे पेट भूखा भर रहा हूं, इसे सब सजाने से क्या होगा। मेरा जो असली चाह है, मैं जिसको चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं, आपके विरह में तड़प रहा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं प्रभु, आपकी सेवा करना चाहता हूं, और आपके साथ आपके जो परिकर गण हैं आपके जो सेवक हैं उनके भी सेवा करना चाहता हूं, प्रभु आप मुझे ये सब समन देकर मुझे बहलाइए मत, इससे मेरा मन नहीं भरेगा पेट नहीं, इससे मेरा सुख कैसे मिलेगा, अरे कहीं तो रहोगे ना, हाँ मानता हूं, ये को मना नहीं कर रहा हूं, ये स्वर्ग पद ब्रह्म पद ये पद सब तभी मेरे लिए काम के बनेगा जब आप और आपके भक्तों के साथ इसमें रहेंगे, अगर मुझे ध्रुव पद देते हैं आप स्वयं मेरे साथ रहेंगे, ध्रुव लोक में जाऊं आपके भक्तों के साथ में आपके सेवा करते रहूं तब ठीक है, चाहे रसाधिपत्य कोई दो सब में जब आप रहेंगे आपके भक्त रहेंगे तब कुछ मूल्य का है, नहीं तब देगा। इसलिए भूखे आदमी के देने से क्या मतलब है, चाहेगा तो माला फेंकेगा उठा के बोला रोटी लो। वही बोलता है कि हे समंजस, हे अखिल सौभाग्य निधि, आपने को छोड़कर ये सब मुझे क्यों देना चाहते हो, ये सब नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। अगर ये सब देना चाहते हैं इसके साथ आप आइए, आपसे चाहिए ये सब सेकंड क्लास, आप आइए फिर ये सब चलेगा, कोई बात नहीं, चाहे स्वर्ग में कुछ भी दे दो चलेगा, आप आइए। ये मानते हैं तो बोलते हैं कि देखो, तो इसी को कहते हैं श्री रुद्रासुर जी ने कि तब दासानुदास रविदास भी हुई अगर इतने बड़े समझदारी से, क्योंकि पहले उन्होंने डायरेक्ट भगवान के सेवक बन चुके थे, नारद जी की कृपा से ये महामंत्र को साधना करके सीधा संकर्षण के पार्षद बन चुके थे, तब उनको पता है कि कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा है। भगवान के धाम से झुकूल के घूमकर सब देखे हैं, जानते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु बहुत दुख पाया अलग होकर के, फिर कभी चांस मिलेगा मुझे, फिर कभी आपके दासानुदास बन सकता हूं क्या, कब बनूंगा। इससे ये पता चलता है, हमारे आचार्य लोग सभी यही बात कहते हैं, मनुष्य जीवन का, इस देह का सबसे बड़ी महासौभाग्य अगर कुछ है तो केवल मात्र ही है जब भगवान के प्रेमी भक्तों के समूह में रहना, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इसी को हमारे आचार्य गण बारंबार प्रार्थना करते हैं, तादेय चरण सभी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है एक अभिलाष, मेरा जन्म जन्म में अगर कोई एक अभिलाष हो तो प्रभु आपके भक्तों के संग चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और क्या कहूं, ध्रुव महाराज तो ऐसे बोले जो इतिहास में ऐसा कोई वाणी ना कर। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक उम्र में इतने दृढ़ प्रतिज्ञा किए, 5 साल के बालक घर छोड़कर जाकर जंगल में इतने कड़ी तपस्या किए, 6 महीना में भगवान को ढूंढते ढूंढते एड्रेस आकर उन जंगल के अंदर उनके सामने खड़ा होना पड़ा। उनका कोई एड्रेस तो था नहीं, ना कोई पोस्टल कनेक्शन नेटवर्क में था, किसमें थे, जीपीएस में नहीं आते पकड़ते, कहां जंगल में खड़े थे मधुबनी। ऐसे हाल कर दिए 6 महीना में, भगवान को वैकुंठ से दौड़ कर आना पड़ा, ढूंढ ढूंढ करके आके जंगल में पहुंचे ध्रुव के सामने, उनके सामने खड़े हैं, ध्रुव बाप बंद करके देख ही नहीं रहे। भगवान आए वैकुंठ से, कितनी लंबा रास्ता तय करके आए, कितने लॉन्ग जर्नी करके आए, और वो अभी तक देख ही नहीं रहे, देख भी नहीं रहे हैं, और स्वागत क्या करें। भगवान बोले भला आदमी, अरे मैं उनके लिए वैकुंठ छोड़ के आया, ये दिखता नहीं मुझे, स्विच ऑफ कर दी। क्यों देख नहीं रहे थे कि ध्रुव महाराज ने वो आपने हृदय में उसी रूप को ध्यानस्थ देख रहे थे, बिल्कुल तल्लीन थे, देख रहे थे, इतने आनंद मग्न थे। अब आंख खोले तब तो बाहर कोई दे सकेगा ना किसको, वो आंख बंद था, अंतर्दृष्टि में देख रहे थे। भगवान बोले कि हो तो मुझे देखेगा नहीं बाहर खड़ा, हम लोग कुछ पता नहीं स्विच, लेकिन उनको तो पता है, तो सीधा स्विच ऑफ कर दिया, सीन ऑफ हो गया, और हृदय में जो रूप देख रहे थे बंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ा, बेचैन हो गए ध्रुव महाराज, क्या हो गया क्या हो गया। आंख खोल दी, आंख खोले जो रूप को देख रहे थे अंदर, साक्षात सामने वही मूर्ति विराजमान है, वही शंख चक्र गदा वाणी वही साक्षात भगवान खड़े हैं सामने। देख करके ध्रुव तो बालक थे, अभी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कैसे भगवान से बात करे क्या करे कुछ नहीं पता था, बच्चे छोटा बालक, केवल इतना मालूम था प्रभु नमस्य है प्रणम्य है, पड़े हैं तो प्रणाम करने लगे, धुम धड़ करके पद कमल को प्रणाम किए और एक बार प्रणाम किए और एक बार प्रणाम किए, हाथ जोड़ के रोते रोते गदगद होके कुछ बोलना चाहता हूं, बोलना तारीफ करूं क्या, जानता नहीं, एबीसीडी भी नहीं जानता, बाबा खा कुछ नहीं जानता, क्या बोलूं, प्रणाम भर करता हूं, रोता हूं, देखता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं प्रभु आपको। भगवान इस प्रकार उनके हाथ समझ करके आपने हाथ में आपने पंचजन्य शंख को उनके कपोल में टच करा दिए, जैसे स्विच ऑन करने से ध्यान चल पड़ता है। ध्रुव बालक पढ़े नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं है, मुख से वायु वेग से स्तुति निकला, धड़ाधड़ बिल्कुल अलंकृत छंद राग रागणी के साथ निकला स्तुति। भगवत शक्ति मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। भगवत कृपा कर दे असंभव को संभव, कौन से बड़ी बात है। ये 5 साल बालक को शंख टच करा दिया, धड़ाधड़ स्तुति किया। स्तुति में उन्होंने ठाकुर जी को सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु कई स्तुति के बाद फाइनल स्तुति में कहते हैं, प्रभु आप मेरे पास क्यों आए, मुझे आई डोंट वांट यू, मैं आपको नहीं चाहता, आप कृपा करें जाइए, मैं आपसे क्या मतलब है, आप नहीं चाहता। बताओ भगवान वैकुंठ छोड़ करके आपके लिए दौड़ करके आपके सामने खड़े, आप बोलते हैं मैं नहीं चाहता। बोले क्यों ना, जिससे मेरे आनंद प्राप्त होगा, जिससे मैं तल्लीन होगा, आपकी कृपा से मुझे पता चल गया, वो आपसे तो मिल पाऊंगा नहीं उसको। अरे क्या ऐसी चीज है जो मेरे से नहीं मिलेगा, मैं सर्व सुख के आगार हूं, सब कुछ दे सकता हूं, मैं प्रसन्न होकर आ गया, कौन सा अलभ्य वस्तु है तुझे नहीं मिलेगा। नहीं अलभ्य है, आपसे नहीं मिलेगा, आप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन जो चीज मुझे सुख दे सकता वो आपसे नहीं मिलेगा, मेरे से नहीं मिलेगा। तू बालक क्या बोलता है, क्या चीज मेरे से नहीं मिलेगा। बोले प्रभु सच बताओ ना, बोलो, मैं चाहता हूं आपके बड़ाई सुनने के लिए, आपके गुण गारिमा सुनने के लिए, तो आप अपने मुख से कभी आपके बड़ाई करेंगे, आपके गुण, क्योंकि आप सज्जन है, कोई भी सज्जन व्यक्ति आपका महिमा अपने मुख से नहीं बोलेगा, तो आप बोलेंगे नहीं, और मेरा कोई मतलब कि नहीं, आप चाहिए फिर किसका चाहिए, आपके भक्त चाहिए जो आपके गुणगान उनको बोलेंगे, खूब खूब बोलेंगे, तो उनके साथ में रहूंगा, आनंद लूंगा, आप तो बोलेंगे नहीं, आप क्या पाएंगे। जिस चीज को मैं सुनना चाहता हूं, जिससे मेरे जीवन के आधार है भगवत कथा, आप उसको बोलेंगे, तो इसलिए जो बोलते हैं इस भक्त के संग होने चाहिए, भगवान के संग को छोड़ करके भगवान भक्त के संग की आकांक्षा किए। ध्रुव महाराज भगवान के सामने डायरेक्ट मांगे, पृथ्वी महाराज भगवान के साक्षात्कार हुआ, भगवान बोले जाओ क्या चाहते हैं, पृथ्वी महाराज हाथ जोड़ के भगवान भागवत प्रमाण बोले, प्रभु अगर सचमुच आप प्रसन्न है मेरे प्रेम कृपा कीजिए, 10,000 कान दे दीजिए मुझे बस, प्लीज, 2 कान से कुछ नहीं होता, 10,000 अयुक्त कर्ण, यही 10,000 कान, ना दो, मैं इतने सुनना चाहता हूं आपकी कथा, इतने सुनना चाहता हूं, 2 कान से क्या बता है, आपके अनंत कथा है विरजमय कथा, मैं इसलिए 10,000 कान चाहिए उसको सुनने के लिए, बस यही मेरे जीवन की ध्येय है। कितनी बड़ी आशा, आज यही बात कहते हैं, प्रताश भी चाहते हैं, अगर किसी भी शरीर में हूं प्रभु, मैं जानता हूं असली प्राप्ति, असली सौभाग्य है आपके भक्तों के संग में रहना, आपके भक्तों के संग में रहेंगे तो आपके कथा गान प्रसाद सब कुछ चलेगा, बड़ा सौभाग्य, इतने आनंद रहेगा, और उनके बिना तो कुछ नहीं। जब रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रश्नोत्तर हो रहा था तो उनको पूछे सबसे बड़ी दुख क्या है, सबसे बड़ी श्रेष्ठ दुख कहे, तुम किसको दुख मानते हैं, बोले भक्त से विरह हो जाना सबसे बड़े दुख, इससे बड़े दुख दुनिया में छोड़ेगी, भक्त संग छूट जाना ये सर्वश्रेष्ठ दुख है, बाकी कोई दुख नहीं। तो इसलिए आज उदास भी आपने बुद्धि लगाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हे हरे, अहं हरे तब पादेक मूलम दासान दास भवितास भूया, आपके जो भक्त है जिनके सर्वस्व आपके श्री चरण है, आपके पदेक मूल ऐसे ही आपके दास जो हैं, ऐसे दासों के संग प्राप्त करना, उनके सेवक सौभाग्य सेवा सौभाग्य प्राप्त हो जाना, ये जीवन का परम सिद्धि ही मात्र है। ये मुझे कब मिलेगा प्रभु, ये आशा करके मानते हैं। मेरे संग भक्त संग पाकर तो क्या करेगा, बस तीन ही काम करना तो है। हे प्राणनाथ, मुझे केवल तीन ही काम करना है, चौथा कुछ नहीं। मन में आपके चिंतन करूं, वाणी में आपके कीर्तन करूं, शरीर में आपके सेवा करूं, बस और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए। उसके अलावा ये सब स्वर्ग पद, ब्रह्म पद, धूप पद, सार्वभौम राज्य, रसाधिपति, योग, सिद्धि, सब धाड़ के कुछ नहीं चाहिए। इससे मेरा मन नहीं भरेगा, इससे मेरे सुख नहीं मिटेगा, दुख नहीं मिटेगा, मुझे केवल यही चाहिए। तो बोलते हैं कि यही चाहिए, तो ठीक ठीक बताओ किस प्रकार मुझे, तो बस मुझे तो आप चाहिए। आप आएंगे तो जैसे कोई सुगंधित फूल आता है तो घूरा उसके चारों तरफ मंडराते रहेंगे, हमेशा गुनगुन करके वो भी आएंगे। तो जैसे आप आएंगे, आपके जो सजातीय उच्च कोटि के भक्त गुनगुन गुनगुन करते हुए आपके चारों तरफ आएंगे, वो छोड़कर नहीं जाते हैं कभी। आपके चरण के चारों तरफ घूमते रहते हैं, नाना प्रकार की स्तुति वंदना कथा करते रहते हैं, आपको किसी छोड़ेंगे तो उनके संग में मिल जाएगा। तो आप ही आने से बाकी सब आ जाएंगे, तो इसलिए मुझे आपकी चाहिए। बोले शत्रुन मुझे चाहिए, किस प्रकार बोले चाहिए, मेरे मन के दर्पण बताऊं। तो ये तीसरे श्लोक में बात बताते हैं, किस प्रकार गृह के जनित में दड़पता हूं, किस प्रकार गृह ताप मुझे कष्ट दे रहा है, मेरा असली दशा किस प्रकार है, अपने स्थिति को बताने के लिए प्रभु के सामने हाथ भी बताते हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक, अजात पंथा इव मातरं खगा, अजात पक्षा इव मातरं खगा। खगा कहते चिड़िया पक्षी, खग खर चरण दीजिए, कमन आकाश, आकाश में रहने वाले जो पक्षी है उनका मुख्य क्या अंग है, पंख, तो चलना फिरना सब उसी से होता है। बोले जब पक्षी के शावक होते हैं वो भी द्विज कहते हैं, जानते नहीं, जैसे ब्राह्मण द्विज होते हैं, चिड़िया को भी द्विज कहा जाता है। क्यों, द्विज शब्द का अर्थ है दोबारा जन्म होना, द्विज दूसरा जन्म। ब्राह्मण लोग एक बार तो शुक्र जन्म होता है, मातृ योनि से जन्म होते हैं, फिर और एक बार जनेऊ संस्कार, उसको दूसरा जन्म कहते हैं, ये संस्कार किया जाए दूसरा जन्म होता है। इस प्रकार पक्षी को भी द्विज क्यों कहा जाता है, ना पक्षी के जो पहले होता है अंडा, फर्स्ट बात हुआ अंडे के रूप में, फिर दूसरे बात हुए अंडे से निकलेंगे शावक, सेकंड बात हुआ ना, पहले बात तो बिल्कुल अचल अंडे के रूप में, उसमें देखो ढेर ले दूर ले अंडे रख लिए, फिर उससे अंडे फाड़ कर जो निकलते हैं सेकंड बार होता है, इसलिए द्विज होते हैं, दोबारा जन्म होता है। तो दोबारा जन्म अंडे से जब निकलते हैं लाल लाल अवस्था में, तो उनके पंख जात नहीं होता, पंख उगा नहीं है वो, थोड़ी देर में पंख उगेगा फिर उड़ने के लायक बन जाते। जब तक पंख नहीं उगता, अंडे से जब निकलते हैं तब उनके जो माता पक्षी होता है, तो घोसला में उनको छोटे छोटे शावक को पूरा लाल लाल छोटे छोटे होते हैं, अभी अभी पैदे हुए हैं, उनको घोसला में रखता है, फिर दौड़ के जाता है, खुद माँ उनको टेक केयर क्या करेगा, वो तो खाएंगे कीड़े मकोड़े खाते ही रहते हैं जिमेदारा, तो जा करके कहीं दूर दूर से ढूंढ करके अपने चोंच में उनका कोई कैरी बैग थोड़ी है चिड़िया का, ना कोई पैकेट है बैग है उठा कर ले आएगा, सामान रखेगा ना लिंदा पीछे रखेगा, कुछ नहीं, वो लाएगा कैसे, अपने चोंच में ही लाएगा। चार बच्चे होंगे, चारों के लिए गोद भी खाएगी, बाकी चारों के लिए खाना अपने चोंच में स्टक करके लाएगी, और कहाँ से लाएगी, अपने चोंच में कभी चिड़िया दाना और जो 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 कीड़े वकूड़े सब कहाँ से इधर उधर वस्तु इकट्ठा करके चोंच में बिल भर करके आएगी। और ये बेचारे घोंसले पर बैठे होंगे छोटी छोटी, अभी पंख उगा ही नहीं, इस प्रकार चल फिर नहीं सकते, बड़े मुश्किल से आंख उठाकर इसे देख पाते हैं, बात बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे डरते हैं, पेचा आदि ऐसे कोई बड़े शिकारी पक्षी देखने से डर जाते हैं, उनका आवाज सुनकर के क्या करेंगे, माँ नहीं है, माँ तो गई बाहर। इतने डर जाते थर थर कांपते हैं, दर्द नहीं होते, भूख तो सताता है, भूख के कारण बारंबार दिखते हैं, घोंसले से मुंह निकाल करके इसे देखते हैं, माँ आ रही है क्या, माँ आ रही है क्या, देखते रहते हैं। देखते देखते कभी कभी पवन से हवा से तो पेड़ के पत्तल फतल हिल जाता है, पत्तल हिलते देखकर खुश हो जाते हैं कि छोटे छोटे कड़रव करते हैं और चोंच खोल देते हैं, माँ तो आ गया, माँ आ गया, अभी अभी खिला गया मुझे, बस हाँ चोंच खोलते थे अभी खिला देते। इतने आशा रख करके, इतने देख कर बैठते हैं, भय से आतुर होकर के, भूख से विकल होकर के, माँ के आशे के लिए आशा बांध करके देख रहते हैं बाहर को, तो पत्र आदि हिलने से भी समझ रहे हैं कि माँ आ गया, माँ आ गया, खुश होकर चंचु खोल देते हैं। इस प्रकार की जो प्रतीक्षा है, आतुर प्रतीक्षा है, जिसके पंख नहीं उठा ऐसे छोटे छोटे पक्षी सावकों का, इस प्रकार मेरे दशा है प्रभु, मैं आपको इसी प्रकार असमर्थ हूं, आपके प्राप्ति के लिए मेरा कोई शक्ति नहीं, कोई साधन भी नहीं, मेरा आपके प्राप्ति के लिए पूर्ण आपके अधीन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, टोटली पावरलेस। तो आपकी कृपा ही मेरा सहारा है, आप कब आएंगे, मुझे कृपा करेंगे, मेरे ये दुख जो नाना प्रकार पेच आदि से भय होता, मुझे भय से उबारेंगे, भूख से सता रहे, मेरे चंचू में कुछ देकर मुझे भूख से रक्षा करेंगे, इसलिए बारंबार आशा लेकर के देखता रहता हूं, भय और भूख से व्याकुल होकर के आपके राह देखता रहता हूं। इसी प्रकार मेरा दशा है प्रभु, इस उदाहरण को देख करके आपने स्थिति बताते हैं, तो भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, दो ही तो काम है ना, छोटे छोटे जो पंख नहीं होगा, छोटे छोटे मक्खी सावक है, वो भय से बचना चाहते हैं, डर लगता है हमको उल्लू खाना जाए, और दूसरा भूख सताता है, बारंबार चोंच खोलते हैं, पेट भूख लगता है, कुछ माँ आएगी कुछ खिलाएगी, यही दोनों तो उनके कमी है ना, तो मैं आ जाता हूँ, आपके जो भूख आदि पूरा सदा के लिए निवृत्त कर दूंगा, और आपके भय आदि निवृत्त कर दूंगा, हैं? मैं आकर कभी तुरंत त्रिताप निवृत्त कर दूंगा, और आपको ये सब सिद्धि विधि दे करके तुरंत भूख लगेगा नहीं, ऐसे सिद्धि दे दूंगा, ऐसे लोग दे दूंगा, भूख होगा ही नहीं, जब तक तो इच्छा नहीं करे खाने के लिए भूख ही नहीं लगे, ऐसी स्थिति दे दूंगा, जो सिद्धि दे दूंगा, और बिन ताप से इतने बड़े पोस्ट दे दूंगा, कभी कष्ट होगा नहीं, अभय पर काम करते ऐसे दे दूंगा, अभी आकर के आपको ताप से बनता हूं, ऐसे दे दूंगा आकर के, तब बोलते नहीं 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 नहीं, इससे मेरा क्या होगा, बोले मेरे त्रिताप तो क्या है, त्रिताप इस प्रकार के मेरा दुख नहीं, मेरा जो तीन दुख है त्रिताप है, केवल आपके सेवा के प्रतिकूल इस असुर शरीर, इस स्थूल और सूक्ष्म असुर देह के द्वारा मैं आपके भक्तों के संग नहीं कर पाता हूं, आपके संग सेवा नहीं कर पाता हूं, यही मेरे त्रिताप है, यही आपके सेवा से वंचित करने वाला ये स्थूल और सूक्ष्म असुर शरीर ही मेरे ताप है, बाधा है, वह सब कुछ नहीं। और भूख क्या है, आपके माधुर्य के विरह, आपके संग सुख सेवा सुख से विरह नहीं पाता हूं, वही मेरा दुख है, बस उसको मुझे देने से बोलेगा, तो मुझे सोईता उदाहरण नहीं, नहीं नहीं ये उदाहरण ठीक नहीं बैठ रहा, दूसरे उदाहरण बताते, दूसरे एग्जाम्पल तुरंत बताते हैं, कैसे पहले तो अजाक पंख, दूसरे बोलते हैं स्तन्यं जथावच्छत राखिदार्ता, बोलते नहीं नहीं ये फिट नहीं बैठा, दूसरे बैठता हूं, मेरी दशा क्या है, कैसा दशा ना, बच्छ बच्छ कहते हैं बछड़ा को, खिदार्ता बच्छ छोटे बछड़ा, आप लोग तो आजकल जो गांव में है पुराने लोग गाय देखे हैं, गाय का बछड़ा देखे हैं, आजकल जिनका जन्म आधुनिक दिल्ली में हुआ, किटाउन में हुआ, ये तो बेचारे गाय देखने उनके भाग्य में नहीं मिलता, टाउन में बड़े बड़े कॉलोनी में रहते हैं, कुत्ता तो घूमते देखते हैं लेकिन गाय नहीं देखते हैं, हाँ बड़े बड़े लोग भी सुबह सुबह कुत्ता को लेकर जाते हैं टॉयलेट कराने के लिए, उनके नौकर बन करके जो भी हो, लेकिन उनको तो देखते हैं, गाय देखना कि बछड़ा देखना ये तो सौभाग्य में उनको हुआ ही नहीं, गूगल में सर्च करेंगे बछड़ा कैसे होता है, क्या करेंगे, दुर्भाग्य है ये भागवत कैसे समझेंगे? ये भागवत उन लोग के लिए हैं जो गोसेवा कर रहे हैं, जो गाय के साथ रहते हैं। अनेक अनेक उदाहरण इसी की तरह है, जो ग्रामीण लोग हैं, गांव में रहते हैं, गाय वस्तु की सेवा करते हैं, पशु पक्षी सब देखते हैं, वो भी भागवत की तरफ समझ पाएंगे। ये टाउन में रहने वाले कैसे समझेंगे? उनका तो है संस्कार। तो ये उदाहरण दासुर दे रहे भगवान के सामने, प्रभु जैसे छोटे बछड़ा, अभी आप जानते हैं बछड़ा पैदा जब होता है वो खड़े होने में कितना टाइम लगता है उनको? अरे कोई पुराने गाय बछड़े वाले है, 2 घंटे भी ज्यादा है, 2 महीना 2 मिनट बताते बस। उसको थोड़ा मां चाट देगा, धूप उठ जाएगा, खत्म, खड़ा हो गया, पूर्ण निरामिषी भोजी, एक बार भी मीट ईटिंग नहीं करता। ये खड़े होने में बस तुरंत खड़ा हुआ 2.5 घंटे भर में। और जो आमिष भोजी है, खूब प्रोटीन खाते हैं, तो पलट मारने के लिए 6 महीना जाता है, खड़े होकर क्या ये तो, लेकिन वो खड़े तो हो जाते हैं बेचारे। छोटे बछड़ा आज ही पैदा हुआ है तो उनके लिए भोज्य तो केवल मांस स्तन्य है, माँ के स्तन, माँ के दूध पीता है, गाय के दूध पीता है। लेकिन दूध माँ चाहता है कि बछड़ा के साथ हमेशा रहे, पहले 1-2 दिन तो रुकेगा, लेकिन उनका कैसे भरेगा, उनका अंदर दूध भी कहां से आएगा? बछड़ा के पास रहने से तो उनका पेट नहीं भरेगा, तो उनको जंगल में जाकर चराना चर के आना पड़ेगा, तो इसलिए दूर जाना पड़ता है। नहीं जाना चाहने पर भी गृहस्वामी जो गाय के मालिक होता है उसको हटा करके बछड़े को बांध देते हैं घर में, बछड़े के गला में नहीं उनके पैर में बांध देते हैं, रस्सी बांध कर रख देते हैं, वो बेचारा भुदकता है, उसको बांध कर गले पैर में बांध कर रख देते हैं खूंटी में, और गाय को हटा कर ले जाते हैं। वो गाय बेचारा रंभाते हुए जाकर दूर दूर में घास चरता है, जब याद आता है कान खड़ा करके पूछ खड़ा होकर रंभाता है, उनका इतने वात्सल्य भाव है उनके बेटा का बछड़ा का याद आता है, लेकिन फिर भी खाता है चलता है। और वो भी बछड़ा भी घर में खुंटी में बंधा होकर के माँ की याद आता है, भूख लगता है और तो चुखाएगा नहीं, घास भी नहीं खा सकता, तो वो भी अपने बोली से आवाज करता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की जो आवाज है उसके अंदर इतने पवित्रता है, शब्द में इतने अशुभ नाश करने की शक्ति है, इतने शुभ शक्ति है कि कितने परिस्थिति को कितने किस पवित्र कर सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है आज इस शब्द को आधुनिक बड़े बड़े शहर में नहीं रखते हैं, तो कुत्ते को पालते उनके सबसे दुशब्द को सुन रहे हैं, जो सारे इनास्तिशियस को बुलाकर लाता है, सारे दुर्भाग्य को इकट्ठा करने वाले शब्द को घर में रखते हैं। और जो गोवत्सा के शब्द है जो सुनने से दूर दूर तक जो हतभाग्या है, जो दुर्गुण है, अशुभ नाश हो जाते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते। गौशाला दूर कीजिए, कुत्ता साला घर में कीजिए, बेडरूम में कीजिए, ये दशा है। तो ये बोलते हैं कि जो खिदारता बच्चा, छोटा बछड़ा अभी 2 दिन का, माँ उनके जंगल में चरने के लिए गई है, उनको भूख में पीड़ित है वो बच्चा, आपने छोटी छोटी आवाज में रंभाती है, इस आवाज करता है, आवाज करता है और रास्ता देखता है कि माँ कब आएगी, मैं दूध पिलाएगी मुझे, मैं दूध पीऊंगी, दूध पीऊंगा, वो मुझे चाटेगी, मुझे सहलाएगी, मैं इसका दूध पीऊंगा। ये दोनों उदाहरण में अंतर क्या है, पहले और दूसरे उदाहरण में? पहले उदाहरण में छोटे छोटे पंखहीन चिड़िया थे, वो माँ को देखती थी, उनके रास्ता देखती थी, वही भी उनके माँ को रास्ता देखती है, एक ही तो है, बोलते नहीं एक ही नहीं, बहुत भिन्नता है क्या ना। पहले जो पंखहीन विहंग अपने माँ की ओर देख रही है, उसमें माँ से क्या चाहती थी, माँ से कुछ नहीं चाहती, माँ भी बाहर के सामान लेकर आएगी, कीड़े मकोड़े वो चंचू से लाकर उनको खिलाएगी, उनको चंचू आकर खिलाएगी, उनके इतने लाड़ प्यार इसमें कुछ नहीं, वो बाहर की वस्तु लाएगी, वो बाहर से चंचू से डाल देगी, उसको खाएगी बस, ना तो उनके कुछ प्रयास है लेने के लिए, ना उनके कुछ प्रयास है देने के लिए, बाहर की बाहर चीज देती। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, बछड़ा सीधा गाय से ही पिएगी, कोई बाहरी वस्तु से नहीं, गाय से उनके शरीर से लात मार करके उनके स्तन से, बड़े स्नेही स्वभाव है, उनके स्तन से मथा लगा करके वो दूध पिएगी, गाय उनको अपने बाक्सल दूध पिलाएगी, उनके चाटेगी, उनको सहलाएगी। तो गाय के साथ शारीरिक संबंध है उनका, शरीर से उनका दूध पिएगी, लेकिन ये तो बाहर के कीड़े मकड़े उठाकर उनका मुंह में दे देगी। ना तो कोई शरीर से उनका लगाव संबंध हुआ, ना शारीरिक वस्तु में बाहर चीज हुआ, तो इससे थोड़ा बेटर ही है, काम पिलाएगी सहलाएगी, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं। बोले प्रभु इस प्रकार क्षुधार्त छोटा बछड़ा अपने मां गाय के लिए आतुर होकर के विकल होकर के रंभाता है, रास्ता देखता है कि कब मेरे मां आएगा, मैं दूध पीऊंगा। इसी प्रकार मैं आपके विरह में तड़पता हूं प्रभु, आप कब आएंगे, मैं आपके संग प्राप्त करूंगा, सुख प्राप्त करूंगा। तो भगवान बोले मैं आपको सुखी हो जाए। बोले नहीं, ये भी फिट नहीं बैठता। बोले क्यों? बोले इसमें तो बछड़ा गाय जब आ भी जाती है तो बछड़ा पीती है, तो पीता है, 10 मिनट पी लगा, फिर गाय को छोड़ के चला जाएगा, भूत के गजा पेट भर गया, फिर गया, फिर मन भर गया, फिर कुछ नहीं। बोला ना 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 ना, मैं आपसे एक क्षण भी हटना नहीं चाहता, आपसे कुछ प्राप्त करके मैं खुश हो जाऊं, फिर आपको छोड़ के चल जाऊं। बोले ना 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 ना, ये उदाहरण ठीक नहीं बोला। ये जब तक गाय नहीं आता आतुरता तो वो तो ठीक है, लेकिन गाय आया दूध पी लिया फिर आतुरता खत्म, मेरा आतुरता खत्म ही नहीं होना चाहिए, हमेशा इस आतुर बने रहूं। प्रभु आप आते रहे, हमको सलाहते रहे, दूध पिलाते रहे, हमेशा इस आतुर भाव रहते रहूं, कभी आपको छोड़ करके खुशी से इधर उधर भाग जाकर ऐसा नहीं। ये उदाहरण से तो दूसरा क्या है, ना तो चिड़िया अपने माता चिड़िया को कुछ सेवा करता है, ना ही बछड़ा अपने माँ को कुछ सेवा करता है, दो लात मारता है, सेवा तो कुछ नहीं कर पाता। माँ के बात चल रही है, बेटा माँ के लिए क्या कर रहा है, कुछ नहीं सेवा कर पा। बोले ना 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 ना, मैं आपके साथ ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चाहता हूं, फिर बताओ सही सही। ना इस बार सही बताता हूं प्रभु, सही क्या है? बोलते प्रिया प्रिय विजितं विषण्णाहा, इसी में मन भरता है। ये उदाहरण सही है, क्या है? बोलते ये प्रिया अपने प्रियतम के लिए, अभी अभी नई शादी हुआ है, किसका नूतन वधु आया है, लेकिन उनके पति का अपॉइंटमेंट हो गया विदेश में, जब लगा अमेरिका में, अब हाल ही शादी हुई है, एक हफ्ता ही नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर आया, इतने बड़े कंपनी से इतने बड़े पोस्ट पेमेंट, मना तो कोई नहीं, जाओ अभी जाओ, चली गई बेचारी। 2 दिन हुआ घर में आई, अब हनीमून क्या, हनी सन नहीं होगा, अब वो तो गए, उड़ गए विदेश गए बिचारी। आप थोड़ा अंदाज कीजिए कितने दुख में तड़पेगी, हो फोटो सामने रखकर देखती होगी, आजकल तो फिर भी व्हाट्सएप ईमेल फोन फोन में काम चल जाता है, जब ग्रामीण होती होगी, जब जमाने में फोन नहीं था, मेल नहीं था, दूरभाष यंत्र कुछ नहीं था, क्या उपाय थे, कैमरा भी नहीं था, किस दशा होता होगा, केवल पति के रूप जो आपने आंख में आंका था, आकलन की थी, उसी को ध्यान करके घर के काम मन लगे, घर से काम करके दरवाजे पर आकर देखते रहेंगे, यही रास्ते में गए, कब आएंगे, आते वाले होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, यही चिंता करती, यही हमसे मन से होता होगा, ना उनका मन किसी काम से लगता होगा, ना आपने खाने पीने सोने में लगता होगा, जो सचमुच प्रियतम के प्रति जो प्रीति रखते हैं, इसलिए प्रिय प्रिय या ये सब दिया गया। आजकल के इसे नहीं कर रहे, कल हम तो सच पढ़ लेंगे, क्या बात है, नहीं, जो सचमुच प्रियम प्रिय, जो सचमुच प्रिय है, आजकल तक पढ़ लिख करके गया वो भाव है ही नहीं, खत्म हो चुका है। तो सचमुच इस प्रकार प्रियतम के प्रति अति प्रियत्व तो है जिसका, विषतम विषन्ना, वो विषन्न भाव से विष जैसे पी लेने से, विष खाने जैसे मन विषन्न हो जाता है, इस प्रकार अति चिंतित होकर के आशा करके रहेगी, इतने आशा इतने उत्कंठा से जर्जरित होते अपेक्षा करते रहेगी, कब आएंगे कब आएंगे। अरे पहले जमाना तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं होता था, फोन फोन की दूरी बात है, कुछ आशा नहीं। प्रभु विदेश गए, दूरदेश गए, कभी आएंगे, जब ही आएंगे, जब ही आएंगे, हमेशा ये आस लेकर कर बैठी रहती है। और जब कभी देखा कि उनके पति आ रहे हैं, प्रतिदिन तो देख लेती, घंटों घंटों दरवाजे से आकर देखती थी, देखा कि उनके पति उनके प्रियतम आ रहे हैं तो कैसा लगेगा हमको, देख करके इतनी खुश हो जाएगी। जैसे प्रियतम उनके आएंगे, संपूर्ण इंद्रिय लगा करके सर्वेंद्रिय में उनकी सेवा करेगी, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और नाना परिपाटी के द्वारा उनको प्रसन्न सुख देने के लिए प्रयास कर लेगी। और पति के रूप को देख करके, उनके बोली को सुन करके और उनके हाव भाव और उनके प्रक्रिया, उनके व्यवहार से इतने अपने आप को सुखी करेगी और उनको सुख करने की इतने पूरी सेवा में छूट जाएगी, लगेगी इतने प्रसन्न हो जाएगी, इतने प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार प्रभु मैं आपके लिए तड़प तड़पता रहता हूं। जैसे एक अभी अभी नवविवाहिता युवती, अपने पति विदेश को चले गए हैं, उनके लिए जिस प्रकार विषन्नता, जिस प्रकार दुखी होकर के हमेशा ताक में रहती है, देख रहती है कब आएंगे, कब आएंगे, कब मैं सेवा कर पाऊंगी, कब मेरे जीवन धन्य होगा, कब मेरा ऐसा होगा, हमेशा यही चिंतन यही ताक में रहती है। ठीक इसी प्रकार विकल होकर के इस अवस्था में मैं आशा करता हूं, प्रभु कब तक और वेट करूं, कब तक और वेट करूं, कब होगा ये आशा मेरे से पूर्ण होगा कभी, इस प्रकार आतुरता से विकलता से आपके राह देख रहा हूं मैंने। तो इसलिए और आप कभी आएंगे, आपको देखने के लिए विकल होता हूं, आप आएंगे जब मेरे दृष्टि पड़ जाएगा, मेरे सर्वांगीण सर्वेंद्रिय सब इसे सेवा करने लग जाऊंगा, जैसे इसी प्रियतमा पत्नी ने आपने प्रियतम पति के लिए सब प्रकार से घर झाड़ू करेगी, बेड लगा देगी, गरम गरम रोटी बनाकर खिलाएगी, उनको पद सम्मान करेंगी, उनको पान पिलाएगी, वो करेगी, सब प्रकार से काय मन वाक्य से लग जाएगी। तो बोलते हैं कि मैं तो बस इतना ही अंतर है, वो दास्य सख्य माधुर्य से सेवा करेगी, मुझे केवल दास्य मिलेगा, मैं दास बनना चाहता हूं, बाकी ये सब तो नहीं कर पाऊंगा। आप आएंगे, आपके और आपके परिवारों के दास्यवत सेवा करूंगा, मेरा केवल यही भाव है। कब आप आएंगे, मेरा है गृह दशा पूर्ण होगा, मैं आपकी सेवा का सौभाग्य फिर तो प्राप्त करूंगा, इस प्रकार मेरा भाव को पूर्ण होगा। इस प्रकार युद्ध स्थल में महाशत्रु के सामने, महा मारणास्त्र के सामने बैठ करके सीधा भगवत ध्यान में भगवान से इसे से बात करते हैं। सारे युद्ध क्षेत्र में करोड़ों संख्या में असुर देवता देख रहे हैं, बाप रे बाप, इतनी बड़ी सिद्ध पुरुष है, रो रोते आंख में घन घन आंसू वर्षा हो रहा है, गदगद वाणी से ऐसे पागल की तरह बोल रहे हैं, वैसे वाणी बोल रहे हैं, भगवान से सीधा बातचीत कर रहे हैं, इंद्र सामने खड़े तो सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कब ऐसा होगा प्रभु, यही मेरे भाव है, आप इंद्र से पीछे पड़कर कोई फायदा नहीं, आप ही कुछ कीजिए, मैं और सहन नहीं कर सकता हूं, आप कुछ व्यवस्था कीजिए, कब तक मैं पढ़ा रहूं, ये शरीर कब मेरा मिटेगा, ये बंधन कब मिटेगा, मैं कब आपके सेवा में सौभाग्य पाऊंगा प्रभु, इस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं। इस उदाहरण से तीन लिए, इस तीन उदाहरण देकर बोलते हैं कि उदाहरण देख कहने के बाद आंसू पोछे, अभी तो हुआ नहीं कुछ, आंसू पोछ करके आंख खोले, देखे तो मैं जितने भूमि में बैठा हूं, प्रभु तो कोई ध्यान में आए तो सुनने, बोले हाय हाय हाय, धिक्कार है मुझे, सच में मुझे ये क्या सौभाग्य था, तो हमें सपना ही देखता, इतने बड़ी सौभाग्य में मूर्ख नीच असुर को प्राप्त होगा, रे 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 रे, तुझे धिक्कार है, तू ऐसे बड़े बड़े आशा करता, ऐसा मत आशा कर, पागल पर मत कर। श्लोकों बताते हैं, ममत्तम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, प्रभु पास में बहुत बड़ी बड़ी आशा कर लिया, बस इतने नहीं चाहिए, बोला केवल इतना ही कीजिए, मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, भगवान का एक दूसरा नाम है उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान को इसलिए कहा जाता है जो चुने चुने अति उत्तम श्लोक के द्वारा आज इनको स्तुति किया जाता है, इसलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। बोले हे उत्तम श्लोक, आपके जो परिकरगण है, जो भक्तगण है, आपके जन है, आप निज जन है, ऐसे उत्तम श्लोक जनेशु सख्य, आपके भक्तजनों के साथ मेरा कभी दोस्ती हो जाएगा, मित्रता होगा। आपसे तो मैं भूल करके सपना देख रहा था, आप में इतने बड़ी आशा तो मैं करना नहीं चाहिए था, आप आएंगे आपकी सेवा करूंगा, हरे दे 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 मूर्ख कहीं के, अभी असुर से मुंडा नहीं, अभी इतने बड़े आशा करता ठीक है तुझे, नहीं 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 ये टू मच हो गया, बस इतना तो कर सकता हूँ ना, आपसे नहीं मिल सकता हूँ, आपके जन से तो मिल सकता हूँ ना, आप जो भक्तजन अभी इसी धरती पर हैं, ऐसे भी भक्तों का संग तो मिल जाएगा ना, यहीं पर है, मैं ही असुर लोक में हूं, कहीं भी हूं, आपके तो भक्त हर जगह में होते हैं, किसी प्रकार से प्रभु आपके भक्त के संग मुझे मिल जाए, मेरा काम भी बन जाएगा। मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, उनके साथ मेरा मित्रता हो जाए, संसार चक्र भमत स्वकर्म भी, हे प्रभु वास अभी सच बता रहा हूं, इसी संसार चक्र में मेरे आपने स्वयं कर्म के कारण जो जो जन्म मुझे प्राप्त होगा मुझे मिलेगा, और क्या करूं, मेरा ही कर्म का फल मुझे भोगना ही होगा, मेरे कर्म के कारण मुझे जिस जन्म में डालना चाहिए मुझे डाल दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, केवल इतने ही चाहता हूं, प्रभु प्रार्थना करता हूं किसी भी जन्म में मुझे रखिए, लेकिन आपके भक्तों के सानिध्य दीजिए प्रभु, आपके सानिध्य बहुत बड़ी बात नहीं देंगे, आप नमत दीजिए, लेकिन आपके भक्तों के सानिध्य दे दीजिए, भले कीड़े मकोड़े के जन्म दे दो, पशु पक्षी पेड़ पौधे लता पता बना दो, लेकिन मंदिर के बाजू में कोई भक्तों के घर में बना दो तब चलेगा, भक्तों की संग ही चाहिए बस, इसी से मेरा काम बन जाएगा। इसी को बारम्बार आचार्य लोग कहते हैं, तादेर चरण सली भक्त सनिवास, जन्म जन्म हरे ही अभिलाष, यही जन्म जन्म अभिलाष होता है, कीट जन्म हो जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्मा पदे नहीं आस, ब्रह्म पद बहिर्मुख नहीं चाहिए, आपके भक्त हो कीड़े हो उनके साथ रहने के तैयार हूं, लेकिन आपके है ना, बस आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो जाए, इतने दे सकते हैं ना, ये तो ये अवेलेबल है, दिल्ली में भी अवेलेबल है, कहीं भी अवेलेबल है, तो प्लीज अरेंज इट। अब मैं बड़ी बड़ी बहुत सपना देख लिया होगी, आशा कर सकता हूँ धिकार था मुझे, मैं छोटी मुंह में बड़ी बात क्यों करूंगा, लेकिन मेरे लायक जो है, मेरे कर्म के अनुसार मुझे अशुभ जोन में डालिए, कहीं डालिए, इधर डालिए, चलेगा, लेकिन आपके भक्त तो सर्वत्र विद्यमान है, कहीं आपके भक्तों के साथ मिला दीजिए, आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो जाए, बस मेरा जीवन सिद्धि हो जाए। मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, संसार चक्र भमतः स्वकर्म भी, ये संसार चक्र में आपने कर्म के अनुसार जो कोई शरीर में कोई काल में कई स्थिति में किस जगह में डाल दो, आई डोंट केयर, केवल इतना मांग है आपको भक्ति संग मिल जाए। त्वन माया त्यजन देह गए हम, देह बोलते हैं कि और एक मांग है क्या, अभी फिर हारे जो असुर शरीर में हूं, आपके माया के प्रभाव के कारण इस असुर शरीर में आया, कई असुरियों के साथ, कोई असुरों के साथ मित्रता हो ही गया, शरीर के संबंधी है ना, पापा चाहता ताऊ ए वो फ्रेंड फ्रेंड सब हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, यही मानसाशी वही सारे चार नियम को पालन करने वाले उन्हीं के बीच में पड़ा, यही मेरे दुख है, यही दुख है, तो आपके माया के प्रभाव से बचा दीजिए प्रभु, मैं इन संग से हट करके भक्त संग में चला गया, इस संग से मैं दुखी हूं, वो सारे चार काम करने वाले मैं जो परिवार में हूं असुर जोनी में हूं असुर, वो सब तो एक से एक है असुर असुरनी, वहां पर रह करके तो कुछ हो नहीं पाता, इन एसोसिएशन से हट करके डिवोटी एसोसिएशन मुझे दे दीजिए, बस ले दे करके एक ही वस्तु दे करके मांगते हैं, क्या है, भक्त संघ डिवोटी एसोसिएशन, इस आश्वासन से हटा करके भक्त के संग मुझे दीजिए। भक्त के संग देने के लिए मुझे अभक्त का शरीर छुड़ाना पड़ेगा, असुर शरीर में रहकर तो कोई भक्त मेरे पास आएगा नहीं, देवता नहीं आते, तू नहीं आएगा मुझे मारने के लिए, पीछे पड़े मारते भी नहीं, मैं बोलता मुझे मार डालो वो नहीं मारते। कभी कभी आचार्य लोग बोलते हैं कि पुत्र अगर इतने मरने के लिए उतावली था, इतने मरने में चाहता था तो इंद्र नहीं मार रहा था, तो क्या फर्क पड़े, मरने के लिए तो नाना उपाय है, कहीं जाके मर जाता, जाके पर्वत के ऊपर डूब जाता, नदी में गिर जाता, सुसाइड कर लेकर कई उपाय, जहर खा ले कुछ कर लो मर जाओ। बोलते नहीं नहीं नहीं, रुद्र इतने समझदार था, भक्त था ना, जानता था कि आत्मघात महापापम, आत्महत्या करने जन्म जन्म तक तामिश्र नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए ये महापाप नहीं करना चाहता, आत्मघात नहीं करेगा, मरना चाहता था आत्महत्या ना करके, सही मरना चाहता, सही मरना, पहले बोला दो ही मृत्यु सबसे श्रेष्ठ कर मृत्यु होता, मरना तो सबको है, कोई एक माइकलाल नहीं है जो मरने से बच जाए। भगवान तो गीता में घोषणा करके बोल दिए, बोले कोई ये सूर्य उदय होता है, कभी बाईचांस समय हो सूर्य उगना बंद ही हो जाए, कभी ऐसे समय आए दिन के बाद रात ही नहीं हो तो रात के बाद दिन ही ना हो, ऐसा शायद कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु ना हो, ये ध्रुव सत्य है। भगवान ने शब्द लगाकर बोले ध्रुव सत्यम, जन्मस्य च ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु का ध्रुव सत्य है, निश्चित होगा, यही से बच नहीं जा सकता, निश्चित मरण धर्म, मृत्यु लोग सभी मरेंगे, पर मरना तो है, लेकिन मरने में दो मृत्यु सबसे श्रेष्ठ माना गया, एक मृत्यु है कैसे, भगवत धाम में भगवत भक्त सानिध्य में, भगवत सानिध्य में भगवत नाम स्मरण स्मृति आदि लेकर के शरीर चढ़ना, ये तो धन्याद धन्य अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, अगर ये नहीं हो पाए तो इतने आसान नहीं है, जन्म जन्म अभ्यास करना पड़ता है तब ये सौभाग्य कहीं मिलता है, नहीं तो अगर शक्ति है धर्म युद्ध में लग जाओ, धर्म युद्ध में बिना पीठ देखा है सम्मुख युद्ध करो, वीर गति की प्राप्त कर जाओ, अरे जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा, लोग बड़ाई करें हाँ बहादुर है बड़ा सही, लेकिन युद्ध में पीठ ना देखा करे सम्मुख युद्ध में मरा, ये भी वीर गति प्राप्त, ये भी एक श्रेष्ठकर मृत्यु है, तो इसीलिए बोला मेरा तो ये चाहता तो हूं आपके नाम स्मरण करूं लेकिन मरूं तो सही, आप क्यों इतरा कर मरना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है ना, आपने मेरे शत्रु इंद्र को फॉर्मूला बताए, अस्त्र बना करके दिए, आपने पोटेंशियल डाल करके दिए, हम ये चांस कैसे छोड़ो, जब मुझे मारने के लिए आप प्लान करके प्लान सैंक्शन करके अप्रूव करके दिए हैं, तो अप्रूव जो किए हैं प्लान इसी में जाओ, तो इसलिए मरते क्यों, लेकिन मार नहीं रहा, वज्र बना करके शक्ति डाल कर दिए, बदमाश मेरे सामने लेकर खड़ा है चला ही ना, अब मैं क्या करूं, मैं जबरदस्ती निधात लगे मैं खुद चला दू, अरे मैं तेरा शत्रु हूं मार मुझे, नहीं मारा नहीं मारा। आप जो ये बात ऐसे बात जब सुना इंद्र ने, ये ध्यानस्थ बैठ करके रो करके जब प्रदाश ने इस प्रकार बात कहा, इंद्र ने सुन लिए, सारे देवता सुन लिए, इंद्र जो पहले मारने के लिए सोच रहे थे अभी तक डिसाइड कर लिए कभी नहीं मारूंगा, ये तो पहले ब्राह्मण को मार कर पाप भोग रहा है, ये उसी का भाई एक ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण में महाभक्त है, इतने बड़े भक्त तो उनके भाई भी नहीं थे, ये तो जगह भंग कर रहा था, वो तो सीधा भगवान से बात कर रहा भाई लड़ाई के मैदान में, ही राम राम, इतने बड़ी भगत तो ब्राह्मण है कभी नहीं मारूंगा उसको, बिल्कुल डिसाइड कर लिया अब तो मारना नहीं, भले जो कुछ हो जाए, महापाप महापाप, अब ब्रह्म हत्या से बढ़कर ये हो जाएगा, अब तो इंद्र चुपचाप हो गए मारना ही नहीं होगा, अरे क्या होगा मारेंगे नहीं, जितने हूं मैं खड़ा होकर तो इंद्र डर गए नहीं कि मारू, पता नहीं मारते मारते पहले से भगवान मुझे हटा देंगे, तू हट मेरे भक्त को मारता है, डर रहे हैं देवता लोग, भक्त के नाम सुनकर बहुत डरते हैं, जब हिरण्यकश्यप मिस्टर हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए थे वो घर छोड़ के चले गए छुट्टी लेकर, वो आया अटैक करने, सारे देवताओं सन्ने को लेकर के आके अटैक किया, अटैक करके लूटपाट करके धन संपत्ति लिया और मिसेस हिरण्यकश्यप को ले गया बांध करके, उनके पाट रानी गया जी को ले गया, वो विज्ञान थी, लेकर जा रहे थे खींच करके उसको। नारद जी ने बोले क्यों ले जा रहे हैं उनको, वो हिरण्यकश्यप की पत्नी है ना। नारद जी ही पता नहीं क्या कितने तंग किया हम लोग को, एक हिरण्यकश्यप हमारा नाक में दम करके रखा है, तो उनके पेट में जूनियर हिरण्यकश्यप है, वो आएगा तो पिता के जैसा और ना काम करे, इसे पहले से ना रहे बांस ना बजे बांस। अब मैं गर्भ हत्या नहीं करना चाहता हूं, जैसे जन्म होगा लड़का को मार करके फिर उनको छोड़ दूंगा, मैं उनके प्रति कुछ लड़बड़ नहीं करूंगा, मैं उनको ले जा रहा हूं, बस मेरे कस्टडी में रखूंगा गेस्ट हाउस में, जब उनका लड़का पैदा हो जाए डिलीवर हो जाए तो लड़का को मार कर उनको अपने घर में छोड़ दूंगा वापस, इसलिए ले जा रहा हूं। एक हिरण्यकश्यप का जो भय है ये उसको मेरे डर लगता है, बचपन से मारना बड़ा इजी है, बड़ा होगा तो फिर तो गया, फिर नहीं हो सकता, इसलिए जन्म होते मार डालूंगा उसको, इसलिए ले जा रहा हूं मार रहा हूं। नारद जी बोले अरे मूर्ख इंद्र तुझे पता नहीं ये हिरण्यकश्यप का बेटा हिरण्यकश्यप असुर नहीं होगा, नहीं भाई मिर्ची का पेड़ में नीम में आ गए भाई, ये कैसे हो सकता, हिरण्यकश्यप का पत्नी है, हिरण्यकश्यप का बेटा होगा, वो दूसरा क्या होगा, अरे बहुत बड़े संकर्षण के भक्त होगा, उनके निज जन्म होगा। हिरण्यकश्यप आश्चर्य तो हुआ लेकिन फिर भी विश्वास किया, क्वेश्चन नहीं पूछा नारद जी को, हाउ हाउ क्या नहीं पॉसिबल, नहीं पूछा, बोला देवर्षि आप बोल रहे ना, यस, तुरंत छोड़ दिया, माफी मांगा कया जो के चरण में परिक्रमा की उनको, मैडम माफ कर दीजिए मुझे गलती होगा, मुझे पता मन मालूम नहीं था आपको भक्त जननी है, मुझे पता नहीं था, क्षमा कर दीजिए, वहीं छोड़ करके प्रणाम करके पैर छोड़ करके चला गया। सुन करके भक्त का नाम सुनते बहुत डरते हैं, भक्त अपराध, भगवान आपने कभी अपराध होने से भले सहन कर ले, भक्तापराध अक्षमणीय है, कभी नहीं सहन, कभी नहीं सहन। ये बात इंद्र को पता था कितने खतरनाक होता है भक्त के अपराध, जन्म जन्म तक भगवान छोड़े नहीं बदला ले, तो इसलिए बहुत डर जाते हैं। तो अब देखा कि वृद्धाश्रम के जो वाणी जो बात कर रहा है कि बोला बाप रे बाप, ये तो इतने भक्त तो मैंने सोचा भी नहीं, ये कैसे बता करूं उसको, सादा ब्राह्मण तो था लेकिन इतनी बड़ी भगत है। आप इंद्र ने तो मना मार कर खड़े हो गए, आगे वृद्धाश्रम क्या करेंगे, वृद्धाश्रम का तो है मरना तो उतावली हो रही मरने के लिए, और इंद्र तो बोले डिसाइड जो भी हो जाए मैं नहीं मारूंगा, और हत्या नहीं करूंगा, भले अस्त्र शस्त्र को वापस डिपोजिट कर दूंगा, एक दधीचि के मार करके लाया बेचारा हमारे लिए प्राण छोड़े, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, अब क्या वृद्धाश्रम करेंगे ये काल सुनेंगे। हरे कृष्ण।